नमस्कार भारत, आज है 6 फरवरी दिन मंगलवार। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। मालदीव में राजनीतिक संकट गहराया, आपातकाल की घोषणा के बाद पूर्व राष्ट्रपति को हिरासत में लिया गया।
अब मुझे लगता है कहीं पर सेना की जो भूमिका है वो काफी इम्पोर्टेंट हो गई है, और उसके बाद किस तरह से जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है वो अपने आप को रीग्रुप करती है और बाहर के एक्टर्स के द्वारा जो सपोर्ट उनको दिया जाता है उससे क्या इम्पैक्ट होगा ये देखने वाली बात होगी।
जांच एजेंसी सीबीआई को आरटीआई के दायरे में लाने पर सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई।
सरकार यदि किसी एजेंसी को अपना ही बनाना चाहती है, उस पर कंट्रोल चाहती है और उसको एक राजनीतिक टूल के रूप में काम में लेना चाहती है, तो वो कभी उसको आरटीआई के तहत आने नहीं देगी।
भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर तनाव जारी, और लीजिए मजा खेलों की एक अलग ही दुनिया का। लेकिन पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। मालदीव में जारी राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन ने सोमवार को 15 दिन के आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल घोषित होने के कुछ देर बाद ही सुरक्षा बल सुप्रीम कोर्ट में घुस गए। आपातकाल घोषित होने से प्रशासन को यह ताकत मिल गई है कि वे अगले 15 दिनों तक जिस किसी पर भी संदेह हो उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। विपक्ष का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम को उनके घर से हिरासत में ले लिया गया है। कुछ दिन पहले मालदीव की सर्वोच्च अदालत ने कैद किए गए विपक्षी नेताओं को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसे राष्ट्रपति यमीन ने मानने से इनकार कर दिया। इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को मालदीव जाने से बचने की सलाह दी है। पश्चिमी अफ्रीका के देश बेनिन में गिनी की खाड़ी के पास लापता हुए तेल के टैंकर का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इस टैंकर में चालक दल समेत 22 भारतीय सवार थे। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बीती रात ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने लापता टैंकर के संबंध में नाइजीरिया के विदेश मंत्री के साथ बात की है। नाइजीरियाई विदेश मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि टैंकर को तलाशने की हर संभव कोशिश की जा रही है। तेल का यह टैंकर गुरुवार को बेनिन तट से लापता हो गया था। अमरीकी शेयर बाजार डाउ जोन्स सोमवार को 1175 अंकों की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। यह साल 2008 के वित्तीय संकट के बाद एक दिन में आई सबसे अधिक गिरावट है। डाउ जोन्स 4.6% की गिरावट के साथ सोमवार को 24,345.75 अंकों पर बंद हुआ। वहीं S&P 500 स्टॉक इंडेक्स 3.8% और नेस्डेक 3.7% की गिरावट के साथ बंद हुए। बाजार में पिछले कुछ महीनों में बढ़त बनी हुई थी, जिसकी वजह से चिंता जताई जा रही थी कि शेयरों की कीमत अधिक आंकी जा रही है। ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकर TD अमीर ट्रेड के प्रमुख रणनीतिकार जो किन्हैन ने इस गिरावट की वजह कुछ इस तरह समझाई। मेरे ख्याल से ये गिरावट बढ़ती ब्याज दरों के डर की वजह से दर्ज की गई है। शुक्रवार को ही बाजार ने अच्छी खासी बढ़त दर्ज की थी, तो इसका मतलब यह है कि बाजार में यह डर कायम हो गया है कि आने वाले वक्त में शेयरों की कीमत और अधिक हो सकती है। ये थे अमरीकी ऑनलाइन ट्रेड स्टॉक ब्रोकर TD अमीर ट्रेड के प्रमुख रणनीतिकार के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। दक्षिण अफ्रीका की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों ने राष्ट्रपति जैकब जुमा से उनका अपना पद छोड़ने के लिए दबाव बनाने पर सहमति जताई है। पार्टी के वरिष्ठ सदस्य चाहते हैं कि जुमा गुरुवार को राष्ट्र के नाम होने वाले अपने संबोधन से पहले पद छोड़ दें। इस संबोधन से एक दिन पहले पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक होनी है। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे जुमा ने अपना पद छोड़ने से इनकार किया है। जर्मनी में गठबंधन सरकार बनाने की कोशिशों के लिए बातचीत अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल की पार्टी का कहना है कि उनके रूढ़िवादी दल और सोशल डेमोक्रेट पार्टी के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति बननी अभी बाकी है। दोनों दलों के बीच लगभग 200 पन्नों का समझौता तैयार हुआ है। अभी स्वास्थ्य नीति और लेबर कानून जैसे मुद्दों पर सहमति बननी बाकी है। सोशल डेमोक्रेट पार्टी के महासचिव लार्स लिंगबिल ने कहा, हम सभी मानते हैं कि मंगलवार का दिन निर्णायक साबित होगा। बातचीत बस अपने अंतिम दौर में है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सभी मुद्दों पर सहमति बन जाए। मंगलवार को शायद ये तय हो जाएगा कि दोनों दल गठबंधन के लिए तैयार हो रहे हैं या नहीं। ये थे सोशल डेमोक्रेट पार्टी के महासचिव के शब्द। सीरिया में काम कर रहे राहत कर्मियों का कहना है कि तुर्की और सीरिया की सीमा पर चल रहे संघर्ष के बीच हजारों लोग फंसे हुए हैं। ऑक्सफैम नामक सहायता एजेंसी के अनुसार जब से तुर्की के कुर्द लड़ाकों को खदेड़ने के मकसद से अफरीन ने सैन्य कार्रवाई शुरू की है, तब से दर्जनों आम नागरिकों की मौत हो गई है। BBC समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल पर फेसबुक पर भी लाइव। आज आपके साथ मैं संदीप सोनी। आज कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हिंद महासागर में बसे एक छोटे से देश से जिसका नाम मालदीव है। नक्शे पर आप देखेंगे तो आप इसे श्रीलंका के काफ़ी नीचे बाईं ओर पाएंगे। लगभग 300 वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश करीब 1200 द्वीपों का समूह है। मुस्लिम आबादी बहुल यह देश बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसकी वजह है वहां पैदा हुआ राजनीतिक संकट जो दिनों दिन गहराता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने इस पर चिंता जताई है। हुआ यह है कि मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन ने देश में 15 दिनों के लिए आपातकाल लगा दिया है। ऐसा तब हुआ जब मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया और राष्ट्रपति ने इसे मानने से मना कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद जो इस समय श्रीलंका में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं उन्होंने मालदीव की सरकार के इस कदम की तुलना तख्ता पलट से की है। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे समझा जाए जानने के लिए हमारे साथी वात्सल्य राय ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष पंत से बात की।
देखिए कहीं पर जो राष्ट्रपति थे अपने आप को मुझे लगता है घिरकावा महसूस कर रहे थे जब से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी। वो काफी समय से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए थे और पावर अपनी तरफ करना चाह रहे थे। सबको पता ही है उन्होंने सारे पोलिटिकल जो उनके ओपोनेंट्स थे उनको जेल में डाल दिया था और उसके बाद धीरे धीरे जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा था उसके चलते कहीं पर उनको ये लग रहा था कि उनकी पोजीशन अब सिक्योर है। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है तब से साफ था कि उनको रिवर्स करना पड़ेगा डिसीजन। तो अब वो क्या करते मुझे लगता है कहीं पर वो अपना आखिरी दाव खेल रहे हैं और उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था।
पूर्व राष्ट्रपति नशीद ने उनके इस फैसले की आलोचना की है, इसे एक तरीके से तख्ता पलट की तरह बताया है, तो उनकी क्या भूमिका देखते हैं आगे आप?
देखिए तख्ता पलट तो काफी समय पहले कर चुके हैं, अब ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पर के पास और कोई विकल्प था ही नहीं क्योंकि अपने आप वो पावर अगर वापस नशीद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनको सौंप देते तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती। अब मुझे लगता है कहीं पर सेना की जो भूमिका है वो काफी इंपॉर्टेंट हो गई है और उसके बाद किस तरह से जो पॉलिटिकल अपोजिशन है वो अपने आप को रीग्रुप करती है और बाहर के एक्टर्स के द्वारा जो सपोर्ट उनको दिया जाता है उससे क्या इम्पैक्ट होगा ये देखने वाली बात होगी।
भारत और मालदीव के रिश्ते भी बड़े गहरे रहे हैं। 80 के दशक में जब अब्दुल गयूम की सत्ता को पलटने की कोशिश की गई थी उस समय भारत ने अपनी सेना को वहां भेजा था। क्या भारत मौजूदा दौर में भी कोई भूमिका निभा सकता है?
देखिए भारत जब से नशीद और यासीन साहब के बीच में रस्साकशी चल रही थी उसमें पीछे से भूमिका निभा रहा था। कई लोगों ने इसकी आलोचना भी करी थी कि जब एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो नशीद सरकार थी उसको जब पलटा गया तो भारत को ज्यादा प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए थी, ज्यादा वोकल सपोर्ट देना चाहिए था डेमोक्रेटिक फोर्सेस को। लेकिन भारत के अपने और भी इंटरेस्ट्स हैं। भारत ये नहीं चाहेगा कि मालदीव पूरी तरह से चीन की तरफ चला जाए जैसा कि जो सरकार है उसने किया है। मैं पूरी तरह से अपने आप को एक तरह से चीन के खेमे में डालने की कोशिश करी है। मुझे लगता है अब एक सिचुएशन ही बन रही है जहां पर भारत को वोकली कहना ही पड़ेगा, अपना जो रवैया है उसको साफ करना पड़ेगा। हालांकि भारत के पास बैक चैनल जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल है।
अब्दुल्ला यामीन के लिए अब क्या कुछ रास्ते बाकी हैं? इमरजेंसी तो उन्होंने लगा दी, आगे क्या?
देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अब वो किस तरह से जो बाहर से प्रेशर पड़ेगा उसको झेल पाते हैं इस पर उनकी लंजिविटी निर्भर करेगी। कहीं पर वो ये सोच रहे होंगे क्योंकि उन्होंने चीन के साथ अपनी घनिष्ठता बढ़ाई है तो चीन उनका पक्षधर बन के आएगा और चीन जो बाकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से और भारत की तरफ से जो एक यूनाइटेड मैसेज जाएगा कि इस तरह की जो परिस्थिति है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता तो कहीं पर वो चीन उसको बैलेंस कर लेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद चीन को गलत पढ़ रहे हैं क्योंकि चीन इस तरह से इकलौता ऐसा एक्टर बन के कभी नहीं उभरा है जहां पर उसने सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके खिलाफ खड़ा हुआ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास विकल्प बहुत कम है।
ये थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष पंत जो मालदीव के राजनीतिक संकट के अलग अलग पहलुओं को समझा रहे थे। और अब बात भारत और पाकिस्तान की। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर दोनों देश एक दूसरे पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। सीमा पार से हो रही गोलीबारी में भारत के कम 4 जवान मारे जा चुके हैं। उधर पाकिस्तान का भी दावा है कि भारतीय सैनिकों की गोलीबारी में पाकिस्तान के 2 आम नागरिक मारे गए हैं। संघर्ष विराम के उल्लंघन के आरोप प्रत्यारोप और इसके असर के बारे में जानने के लिए वात्सल्य राय ने इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी उर्दू संवाददाता हारून रशीद से बात की।
पाकिस्तान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी बताया है, इंडियन डिप्टी हाई कमिश्नर था, उनको फॉरेन ऑफिस तलब करके और एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जो लेटेस्ट वायलेशन हुई है उस पर। पाकिस्तान जो पहले से कहता आ रहा है, वो आरोप भी उन्होंने दोहराया है कि ये इंडिया की तरफ से वायलेशन हुई है, जिसका पाकिस्तानी जो सेना है उसने भरपूर जवाब दिया है। लगता ये है कि पिछले एक वर्ष से जो टेंशन है लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर, वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। और अगर आप पाकिस्तानी सेना के फिगर्स देखें तो उनका कहना है कि कोई 1900 के करीब वायलेशंस जो है वो इंडिया ने इस पिछले एक वर्ष में किए हैं। एक लो इंटेंसिटी जो टेंशन तो पहले होती ही थी इस इलाके में, अब लगता है कि एक प्रॉपर लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट वहां पर चल रहा है।
LOC पर बड़े पैमाने पर पलायन भी हो रहा है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं भारत प्रशासित कश्मीर में, 84 स्कूलों को बंद किया गया है। पाकिस्तान की तरफ क्या स्थिति है?
पाकिस्तान की तरफ ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है कि स्कूल बंद किए गए हैं या कोई और इस तरह का इफेक्ट हुआ है, लेकिन कुछ इलाकों में यकीनन काफी अरसे से जो मामूलात जिंदगी है, जो रूटीन का काम है, कुछ इलाकों में वो बंद पड़ा है। कुछ सड़कें हैं जो भारतीय सेना की नजर में है, होती हैं, और जहां पर पाकिस्तान का आरोप है कि फायरिंग होती है, तो वो सड़कें और रास्ते जो हैं वो बंद किए हुए हैं, तो जो मकामी लोग हैं वो उन पर आ जा नहीं सकते। तो इस किस्म की मुश्किलात तो चली आ रही हैं, लेकिन ये अभी तक कोई इस तरह की जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शांति प्रक्रिया की बहाली की बात की है, क्या पाकिस्तान में भी ऐसा कोई सुर सुनाई देता है?
पाकिस्तान में तो योम कश्मीर मनाया गया है सरकारी सतह पर, पिछले कई वर्षों से मनाया जा रहा है, ताकि इंडियन कश्मीर है वहां के जो कहता है कि स्ट्रगल है, उसके साथ अपनी सॉलिडेरिटी का इजहार करने के लिए। तो इस सिलसिले में भी जो मैसेजेस आए हैं प्रधानमंत्री के या पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के, उसमें भी वो तो यही बात कर रहे हैं कि जो UN की रेजोल्यूशन है उसके तहत इसको रिजॉल्व होना चाहिए और मुजाकरात के रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन जहां आप टेंशन देखें लाइन ऑफ कंट्रोल पर और जो तलखी है सेना के लेवल पे, तो वो तो बढ़ती ही जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक सेना कोई सिग्नल नहीं देगी कि अब हालात मामूल पर आ गए हैं बॉर्डर पर, उसके बाद ही जो सियासतदान हैं उनको कोई स्पेस मिल सकेगा और कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकेगा।
भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के उल्लंघन पर ये थे इस्लामाबाद से बीबीसी उर्दू संवाददाता हारून रशीद।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा, नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। कार्यक्रम में अब रुख कर रहे हैं भारत का, जहां आज सुप्रीम कोर्ट ये तय कर सकता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी CBI को RTI यानी सूचना के अधिकार के दायरे में होना चाहिए या नहीं। सुनिए दिलनवाज पाशा की रिपोर्ट।
CBI पहले RTI के दायरे में थी, लेकिन 2011 में कानून में हुए एक संशोधन के बाद ये RTI के दायरे से बाहर हो गई। अदालत में याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता अजय अग्रवाल का मानना है कि बोफोर्स मामले के दस्तावेजों को सार्वजनिक होने से रोकने के लिए सरकार ने CBI को RTI से बाहर किया था।
ये मैंने याचिका हाई कोर्ट में इसलिए दायर की थी कि मैंने RTI में जो सारे कागजात बोफोर्स से संबंधित मांगे थे, वो कागज उन्होंने देने को मना कर दिए थे। उसके बाद मैंने सारे 1-2 पेपर्स मांग लिए थे, उन्होंने डिनाई कर दिया था। फिर मैं उसमें CIC में चला गया था, केंद्रीय सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में, और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने CBI के अधिकारियों को बुला के कहा था कि इनको पेपर्स दीजिए, और उसी बीच में उन्होंने तुरंत उसको 9 जून 2011 को RTI से आउट कर दिया।
पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने भी माना था कि CBI को RTI के दायरे में होना चाहिए।
जब कानून बना 2005 में, तब ये Schedule 2 डाला और Schedule 2 में कुछ एजेंसी उन्होंने लिस्ट करी थी, मगर Schedule 2 क्या है वो उन्होंने लिखा था कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी, और काफी छानबीन से ये महसूस हो रहा था कि ये न सिक्योरिटी एजेंसी है न इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो उस वजह से ये तो पुलिस एजेंसी है एक तरह की, तो इसको Schedule 2 में डालना गलत था। बहुत सारे किस्से हैं जो सीबीआई में जाके फिर कहीं खो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी ये माना है कि सीबीआई जो भी सरकार होती है उसके गिरफ्त में होती है।
सीबीआई के पूर्व संयुक्त निदेशक एनके सिंह कहते हैं कि कुछ शर्तों के साथ सीबीआई को आरटीआई के दायरे में आकर और पारदर्शी होना चाहिए।
जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या इंटेलिजेंस एजेंसीज है उसको आम लोगों को जानना या जानने देना, वो उससे जो काम है, जिस काम में लगा है इन्वेस्टिगेशन में या इंटेलिजेंस कलेक्शन में, उससे समझौता होगा, उस पर आरटीआई का लागू नहीं होना चाहिए। अब बात रखना चाहिए, कुछ उसमें शर्त रखना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आम लोगों को बतलाने में, जानने देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी के सारे बातों को गोपनीय रखा जाए, ये थोड़ा खतरनाक भी हो जाता है।
तो ऐसी क्या वजह है कि सीबीआई को पहले आरटीआई के दायरे में रखा गया और बाद में इससे बाहर कर लिया गया? आरटीआई कार्यकर्ता निखिल डे कहते हैं कि इसकी वजह नेताओं के मन में जनता का डर है।
सीबीआई के पास ही जाते हैं वो सारे मामले जो बड़े बड़े नेता और अधिकारियों के जांच के हैं, और जांच कभी तो ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, कभी पाया तो उसका चार्जशीट नहीं फाइल होता है। आजकल आज तक सीबीसी का जो पूरा ढांचा है उसको सरकार से फ्री नहीं किया है। सीबीआई डायरेक्टर के आज तक एसीआर सरकार करती है, तो बहुत सारा कंट्रोल है सीबीआई के ऊपर। अब उसको भी दिखाना कि सच में निष्पक्ष तरीके से जांच हो रहा है और आगे चल रहा है या नहीं, वो तो आरटीआई से ही आएगा। तो सरकार यदि किसी एजेंसी को अपना ही बनाना चाहती है, उस पर कंट्रोल दायर करना चाहती है और उसको एक राजनीतिक टूल के रूप में काम में लेना चाहती है, तो वो कभी उसको आरटीआई के तहत आने नहीं देगी। और केवल सरकार नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये दोनों मुख्य पार्टियों के मिलीभगत से हुआ। ये एक राजनीतिक क्लास का जो डर है जनता से, ये उसको भी दर्शाता है। और कोई भी एजेंसी हो, वो अच्छी तभी होगी जब उसकी पारदर्शिता हो।
सीबीआई गोपनीयता के पर्दे में रहे या जनता उसकी जाँच कर सके, ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट को करना है।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजीव बालियान, कुछ विधायक और खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के सिलसिले में दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की है। उनका दावा है कि पिछली सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर मुकदमे दर्ज कराए थे। लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
करीब 4.5 साल पहले मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगों की चर्चा एक बार फिर शुरू हुई है। अब दंगों में अभियुक्त बनाए गए लोगों पर दर्ज मामले वापस लेने का दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि इसके लिए सरकार ने भी पिछले दिनों प्रयास किए थे, जब न्याय विभाग ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस बारे में पता लगाने को कहा था। वहीं सोमवार को बीजेपी सांसद संजीव बालियान, बुढ़ाना के विधायक और खाप पंचायतों के 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बीजेपी सांसद संजीव बालियान ने बताया,
चूंकि जो लोग घर छोड़कर चले गए थे उस समय जो प्लान हुआ था मुजफ्फरनगर को लेकर, तो कहीं अगर थोड़ी सी भी टूट फूट हुई तो आगजनी और उसको तोड़ फोड़ का रूप दे दिया गया। और 402 मुकदमे जिसमें हजारों लोग हैं, वो पिछले 4 सालों से लोग कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, उनसे बहुत से मुकदमे फर्जी हैं। चूंकि मुआवजा मिला था उस समय मुकदमा दर्ज करवाते, जिस तरह से रेप के मुकदमे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 10 लाख का मुआवजा दो। खुद वादियों ने बाद में इनकार किया कि हमारे साथ रेप नहीं हुआ। फर्जी मुकदमे में लोग जेल गए हैं, अभी तक लोग चक्कर काट रहे हैं। सरकार या तो मुकदमे वापस ले, अगर लीगली नहीं लिए जा सकते तो सरकार पुनर्जांच के आदेश दे, दोबारा जांच हो और जो फर्जी मुकदमे थे वो समाप्त किए जाएं।
संजीव बालियान का कहना था कि मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को विधिक राय लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। संजीव बालियान के मुताबिक दंगों के बाद कई लोगों के खिलाफ राजनीतिक विद्वेष के चलते मुकदमे दर्ज कराए गए, जबकि कुछ लोगों ने तो सिर्फ मुआवजे के लिए FIR लिखा दी। उनका आरोप था कि तमाम स्थानों पर मुआवजा लेने के लिए खुद आगजनी की गई। प्रतिनिधिमंडल में शामिल एक खाप के प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह कहते हैं,
रिसार्ड में एक जांच टीम जब गई तो बताया भाई ये फला मरा है, उसके घरवाली मरी है, तो घरवाली तो जीवित थी। जब उसका प्रूफ दे दिया भाई केस झूठे हैं, यहाँ कोई मरा ही नहीं, तो घरवाली जीवित थी। तो पता नहीं सरकार के दबाव से या किसके दबाव से जो है, मतलब जो उसकी माँ 6 महीने पहले मर चुकी थी वो जो है वो दर्शा दी गई थी, उसके FIR जो है मतलब उसके नाम से हो गई थी।
लेकिन विरोधी दल सरकार की इन कोशिशों का विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदय वीर कहते हैं कि राजनीतिक मुकदमों के बारे में सरकार को एक नीति बनानी होगी, तभी इनसे बचा जा सकता है। साल 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों में कुल 510 मुकदमे दर्ज कराए गए थे, जिसमें करीब 7000 लोग नामजद किए गए थे। इन दंगों में लगभग 60 लोग मारे गए थे और कई लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ा था। मामले की जांच SIT ने की थी और SIT की रिपोर्ट के बाद कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
कार्यक्रम में आगे चलेंगे किला रायपुर, जहां खेलों की एक अलग ही दुनिया है, लेकिन पहले दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियां जान लेते हैं नवीन नेगी से।
दिल्ली से छपने वाले समाचार पत्रों में आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह का राज्यसभा में दिया पहला भाषण छाया हुआ है। राज्यसभा सांसद के रूप में अमित शाह ने सोमवार को उच्च सदन में अपना पहला भाषण दिया था और उस भाषण के जिस बात का जिक्र सबसे ज़्यादा अखबारों में है, उसमें उनका वह बयान जिसमें उन्होंने कहा कि पकौड़े बेचना बेरोजगार रहने से बेहतर है, इसको तमाम अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। दरअसल कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक TV में इंटरव्यू दिया था, उस TV इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पकौड़े बेचने को रोजगार से जोड़कर देखा जा सकता है और उसी पर अमित शाह ने राज्यसभा में बात कही थी। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने राज्यसभा में ही विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद के उस बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विपक्ष के नेताओं के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने आरोप लगाए हैं कि सरकार ED, इनकम टैक्स और NIA का इस्तेमाल करके राजनीतिक दलों को बांटने का काम कर रही है। सरकार कांग्रेस से जुड़े लोगों को परेशान कर रही है और इस वजह से कई बिजनेसमैन उनके साथ फ़ोन पर बात करने से घबरा रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर खबर छापी है कि पद्मावत के बाद अब कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी पर भी विवाद हो सकता है। यह फिल्म रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर बनी है। अखबार लिखता है कि जिस तरह पद्मावत फिल्म से राजपूत समुदाय नाराज था, वैसे ही मणिकर्णिका फिल्म से ब्राह्मण समाज नाराज हो सकता है।
कोई वजह बताई गई इसकी नाराजगी की?
जी हाँ, नाराजगी की वजह यह बताई गई है कि ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सुरेश मिश्रा ने जयपुर में एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि मणिकर्णिका फिल्म में तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है और इसमें रानी लक्ष्मीबाई को एक अंग्रेज के साथ प्रेम करते हुए दिखाया गया है। हालांकि दूसरी तरफ फिल्म के प्रोड्यूसर कमल जैन ने यह कहा है कि उन्होंने कई इतिहासकारों और विद्वानों के साथ राय ली और उसके बाद ये फिल्म बनाई है। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने एक तस्वीर प्रकाशित की है जिसमें भारत की U19 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के भारत वापस लौटने की ये तस्वीर है और भारत की U19 टीम, जैसा कि हम जानते हैं, विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर चौथी बार विश्व विजेता बनी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के उस बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसमें उसने कहा है कि दो वयस्क लोगों की शादी में किसी तीसरे को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।
ये उसी तरह की बात है जैसे मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी।
जी हाँ बिल्कुल, अगर दो लोग राजी हैं तो तीसरा आदमी उसमें कोई अड़ंगा नहीं लगा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है अपने इसी बयान में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाप पंचायतें इस तरह के मामलों में बेवजह घुसने की कोशिश ना करें और किसी शादी की वैधता को कानून के हिसाब से तय किया जाएगा, उसके गोत्र या परंपराओं के हिसाब से उसको जांचा परखा नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है।
बहुत शुक्रिया नवीन नेगी समाचार पत्रों की सुर्खियां बताने के लिए। और श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं पंजाब के लुधियाना जिले के किला रायपुर गाँव में, जो ओलंपिक की तर्ज पर अपने खेल आयोजन के लिए मशहूर है। दलजीत अमी की रिपोर्ट सुनिए।
इस वक्त मैं लुधियाना जिला के किला रायपुर गांव में हूं। यह एक गांव जाना जाता है इनके हर साल होने वाले खेल मेले के लिए, जिसको ग्रामीण ओलंपिक गेम्स भी कहा जाता है। जो आवाजें मेरे साथ आप सुन रहे हैं यहाँ की स्टेज से आ रही हैं और मेरे सामने जो दृश्य है एक पूरी दर्शक दीर्घा है जो लोगों से खचाखच भरी हुई है, जिसमें रंग बिरंगी पगड़ियों और चुन्नियों वाले लोग, औरतें, मर्द बैठे हैं और मेरे सामने कबड्डी का मैच चल रहा है और उसके साइड में एक ट्रैक है जिसपे कुछ देर पहले एथलेटिक्स का कंपटीशन चल रहा था और उसके बाद उसी ट्रैक पे यहाँ पर साइकिल की रेस हुई थी और थोड़ी देर पहले यहाँ पर हाथियों की रेस हो रही थी और ऊँटों की रेस हो रही थी। यहाँ पर मेरे साथ हैं प्रिंसिपल सरवन सिंह जो पंजाबी के स्पोर्ट्स राइटर हैं।
खेलों में जो डिफरेंट खेल होते हैं उनमें कुछ खेल तो वो होते हैं जिनका कंपटीशन नेशनल गेम्स में, इंटरनेशनल गेम्स में होता है, ओलंपिक आर्डर की गेम्स हैं जैसे हॉकी है, एथलेटिक्स है, और कुछ ऐसी गेम्स हैं जिनको पंजाब का देसी खेल बोला जाता है। और इस मेले की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि जहाँ जो गांव आले दुआले के हैं उनके जो सोशल फंक्शन होते हैं, मैरिजेस होती हैं, वो भी इन तारीखों को देखकर एडजस्ट करते हैं कि कौन सी तारीखों जो ये खेलें हो रही हैं।
किला रायपुर में हर उम्र के मर्द और लड़के लड़कियां पार्टिसिपेट करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से मनप्रीत कौर हॉकी की टीम लेकर आई हैं। वो इस टूर्नामेंट की अहमियत के बारे में बताती हैं।
बात ऐसी कि जहाँ पे जो जितने भी रूरल टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे बहुत कम लड़कियों की पार्टिसिपेशन होती है। उनमें से एक ये मेन है, एक किला रायपुर है, एक गांव है। ये जो रूरल यहाँ पे टूर्नामेंट कराते हैं और यहाँ पे गेम करवाते हैं, इनके कारण ही हम यहाँ पे आए हैं।
किला रायपुर की खेलों का लोगो बैलगाड़ी है जो इनके हर पोस्टर पे छपा होता है। हालांकि अब बैलगाड़ियों की दौड़ यहाँ पर नहीं होती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन बाकी जानवर यहाँ पर आते हैं, जैसे ऊंट हैं, हाथी हैं। हरविंदर सिंह अपना ऊंट लेकर यहाँ पर आए हैं।
आज तो 22-23-24 साल से आ रहे हैं इत्थे, साडा इत्थे आके मन खुश हो जांदा।
आप पंजाब के खेल मेले में आए हैं तो आपको गिद्दा और भंगड़ा तो दिखाई देगा ही, इसके साथ ही वो नृत्य शैलियां भी दिखाई देंगी जो आमतौर पर कहा जाता है कि वो लुप्त हो रही हैं। किला रायपुर से बीबीसी हिंदी के लिए दलजीत अमी।
तो जैसा कि अभी आपने सुना, भारत का देसी ओलंपिक जहां होते हैं अनूठे खेल, उन खेलों की और इस खेल मेले की तस्वीरें देखना चाहें तो आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और भी खबरें यहां आप पढ़ सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं। और अब बाकी के खेल समाचार जान लिए जाएं।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं सुमिरनप्रीत कौर। आईसीसी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम की घोषणा की जिसमें 4 भारतीय खिलाड़ी शामिल है। हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत ने अपने नाम किया। आईसीसी टीम ऑफ द ईयर में जो भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं वो हैं पृथ्वी शॉ, मनजोत कालरा, शुभम गिल, साथ ही अनुकूल रॉय। इन खिलाड़ियों के अलावा इस सूची में साउथ अफ्रीकन और पाकिस्तानी खिलाड़ी भी शामिल हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड में हुए अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने जीत दर्ज की। कल ये विजयी टीम भारत पहुंची। आगे का सफर इन खिलाड़ियों के लिए कुछ ऐसा होगा कि सभी एक टीम में नहीं खेलेंगे, और इसी पर बात की अंडर 19 टीम के भारतीय कप्तान पृथ्वी शॉ ने।
ऑब्वियसली एक इमोशंस होगा जब हम लोग एक दूसरे को यू नो बाय करेंगे ऑब्वियसली, बट ये एक ऐसा मेमोरी है जो भले ही हम लोग में से कोई सीनियर वर्ल्ड कप यू नो लिफ्ट करे या ना करे, बट हम लोग को ये चांस मिल गया कि ये वर्ल्ड कप लिफ्ट करने के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। एंड ऑब्वियसली सारे यू नो सारे बॉयज ने इतना वर्क किया है अपने ऊपर, यू नो 1.5-2 साल से यू नो हमेशा एज अ कैप्टन मेरे को भी बैक किया ये टूर्नामेंट में। चलो गेलो वाइस कैप्टन, यू नो पूरी टीम मेरे साथ थी। जब भी मेरे को लगता था कि मैं थोड़ा प्रेशर में आ गया तो यू नो पूरी टीम मेरे साथ थी, तो एक बहुत अच्छा चीज़ था।
अब बात उस श्रृंखला की जो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही है। वन डे इंटरनेशनल मैच की सीरीज चल रही है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच। इस अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा केप टाउन में 7 फरवरी को। खेल की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
खेल समाचारों के बाद स्टूडियो की घड़ी कह रही है भारत में थोड़ी ही देर में बजने वाले हैं 7:00। वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं नवीन नेगी से।
मालदीव में जारी राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन ने सोमवार को 15 दिन के आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल घोषित होने के कुछ देर बाद ही सुरक्षा बल सुप्रीम कोर्ट में घुस गए। विपक्ष का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम को उनके घर से हिरासत में ले लिया गया है। पश्चिमी अफ्रीका के देश बेनिन में गिनी की खाड़ी के पास लापता हुए तेल के टैंकर का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इस टैंकर में चालक दल समेत 22 भारतीय सवार थे। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बीती रात ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने लापता टैंकर के संबंध में नाइजीरिया के विदेश मंत्री के साथ बात की है। जर्मनी में गठबंधन सरकार बनाने की कोशिशों के लिए बातचीत अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल की पार्टी का कहना है कि उनके रूढ़िवादी दल और सोशल डेमोक्रेट पार्टी के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति बनना अभी बाकी है। अमरीकी शेयर बाजार डाउ जोन्स सोमवार को 1175 अंकों की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। यह साल 2008 के वित्तीय संकट के बाद सबसे अधिक गिरावट है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया कमलेश ने। अगला प्रसारण वक्त आप जानते हैं दिन भर शाम 7:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। bbchindi.com हमेशा आपके साथ है।